नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उमेश राजदेरकर मानव विद्या सामाजिक शास्त्र विद्या शाखे में कार्यरत हूं। कल हमने डॉक्टर सुनील कुमार लौटे जी से संगणक का इतिहास जान लिया, संगणक का प्रारंभिक स्वरूप कैसे था, कौन कौन से ऐसे संस्करण हुए जिससे संगणक बहुत बदल गया, और यहां तक नौबत आई कि आज हम जेब में संगणक लेके घूम रहे स्मार्टफोन के जरिए। लेकिन यह तो हुआ भारी स्वरूप उसका, संगणक के अंदर क्या है, उसके पेट में क्या है, ऐसे कौन से मशीन है, ऐसे कौन से पुर्जे है, ऐसे कौन से ट्रांजिस्टर है कि जिसके बदौलत ये इतना बड़ा काम करता है। आज हम सबको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हम ये शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका शास्त्रीय स्वरूप क्या है, हार्डवेयर की परिभाषा क्या है, वो संगणक में किस तरह का काम करता है, और क्या वो स्थायी रूप में रहता है या उसमें भी कुछ बदलाव आता है। जिस तरह संगणक में संशोधन का दौर चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि हार्डवेयर एक ही ऐसी स्थायी रचना है कि जिसमें कुछ बदलाव की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो मेरे मन में ये जो सवाल है, जाहिर है आपके मन में भी होंगे, और इसलिए हमारा जो तीसरी इकाई है संगणक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, उसके बारे में आज हम डॉक्टर सुनील कुमार लौटे जी से अधिक जानकारी लेंगे। मैं मेरी तरफ से और आपकी तरफ से डॉक्टर साहब का स्टूडियो में स्वागत करता हूं। नमस्कार सर।
नमस्ते
सर। जैसे कि हार्डवेयर के बारे में बहुत बोला जाता है, बहुत लिखा भी जाता है, लेकिन सही मायने में अगर आप मानो तो सरल भाषा में अगर कोई हमें बताए कि हार्डवेयर का मतलब क्या है और वो किस तरह से काम करता है, तो बहुत हमें आसानी होगी हमारे एग्जाम में जो बच्चे देंगे इस
एक पेपर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि संगणक को लेकर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यदि आपको वर्गीकरण करना है मनुष्य के जीवन के संदर्भ में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मनुष्य का जो शरीर है वह संगणक का हार्डवेयर है, मनुष्य का जो मन और हृदय है वो उसके सॉफ्टवेयर है। यदि हमारे छात्र इस एक भूमिका को लेकर संगणक की सारी प्रणाली, कार्यविधि, उसके उपकरण, उसके उपस्कर, उसके संसाधन, इन सबका प्रयोग करते रहेंगे और उससे जानते रहेंगे, तो दोस्तों ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि अगम्य है और जिसको हम समझ नहीं सकते। मेरी दृष्टि से संगणक को जान लेना आज की तारीख में दो तरह की तैराकी है। कभी आपने देखा होगा कि देहात में हम कुएं में तैरते हैं, ऐसा बताया जाता है कि तैराक दो तरह के होते हैं, एक कुएं में तैरने वाले और एक समुन्द्र में तैरने वाले। दोनों का अपना अपना कौशल, अपनी अपनी जोखिम, अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है और अपना अपना नशा भी होता है। संगणक में भी वो बात है कि हार्डवेयर एक ऐसा कुआ है कि जो अपनी सीमा में, अपने परकोटे में तैराक को तैरने की आजादी देता है। सॉफ्टवेयर अप्रत्याशित रूप से सागर बनता जा रहा है, वो इसलिए कि मनुष्य की आकांक्षाएं थमने का नाम नहीं ले रहे, और ये जो मनुष्य के मन में एक मिडास बैठा हुआ है, मनुष्य के मन में एक सारी दुनिया को चूसने समझने का परिस विकसित हो गया है, उससे दोस्तों हमारे सॉफ्टवेयर एक सागरी दुनिया की ओर हमें ले जा रहे हैं। जैसे कि मैंने प्रारंभ ही बताया कि संगणकीय तकनीकी को जानने के लिए इन दोनों संगणक की इकाइयों को जान लेना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। हिंदी में इस हार्डवेयर को एक प्रतिशब्द है यथावस्तु। यथावस्तु का अर्थ यह होता है कि जो चीजें हमें भौतिक रूप से दिखाई देती है, जिनके आकार प्रकार होते हैं, जो दर्शनीय है, जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, ऐसी सारी वस्तुगत चीजें जो होती है वो संगणक में भी होते हैं। जैसे कि हम संगणक को देखते या टीवी को देखते, टीवी का पर्दा है, पटल है वो, तो वह हार्डवेयर का हिस्सा है। संगणक के नीचे एक बक्सा होता है कि जिसमें सारी संगणक की क्रियाकलापों की उपस्करण उसमें बिठाए होते हैं, तो वह है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर उसको आजकल की तारीख में उसके साथ हम मुद्रक को जोड़ देते हैं, स्कैनर को जोड़ देते हैं। इन सब से मिलकर एक जो काम हम कंप्यूटर में करते हैं, संगणक में करते हैं, वो इन तीनों का एक समन्वित रूप होता है। इसलिए मोटे तौर पर यदि हम संगणक को जान लेने का प्रयास करेंगे तो सरसरी तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा संगणक तीन प्रकार के प्रमुख काम करता है। एक, उसको हम तरह तरह की सूचनाएं, आदेश, अपेक्षाएं उसके सामने हम व्यक्त करते हैं, लिखित रूप में क्लिक करके हम उसको समझाते हैं। समझाने पर वह प्रक्रियाओं से उसे ढूंढ निकालते हैं कि जैसे जो हमारे छात्र इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, उनको मालूम है कि हम गूगल सर्च इंजन पर जाते हैं, और गूगल सर्च इंजन पर जैसे कि अभी इसी संदर्भ में आपके मन में जिज्ञासा है कि हार्डवेयर क्या है जान लेना, तो बस गूगल पर जाओ और टाइप करो व्हाट इज हार्डवेयर, या हिंदी में टंकित करो कि हार्डवेयर क्या होता है, तो एक नहीं सौ उत्तर वह संगणक देता है। वह संगणक क्या करता है कि आपका प्रश्न पहले जान लेता है, प्रश्न को जान लेने के बाद वो उसको ढूंढ निकालता है। उसके दिमाग में तरह तरह के खाने बने रहते हैं, हमारे दिमाग में जैसे तरह तरह के संवेदन केंद्र है, वैसे संगणक में भी छोटे मोटे ऐसे खाने होते हैं कि जहां ये सारी बातें संग्रहित होती है। भंडारण की क्षमता दिनों दिन संगणक की इतनी बढ़ गई कि लोग ऐसा मानते हैं कि सारी दुनिया संगणक में समा गई है, ऐसी कोई चीज ज्ञान विज्ञान की संगणक से अस्पर्शित नहीं रही। तो वह प्रक्रिया करके कहीं से ढूंढ निकालकर हमें दे देता है, और जब उसके पास उसके स्मरण में कोई बात नहीं होती तो आपको जवाब भी देता है कि आई एम नॉट एबल टू फाइंड यूर क्वेश्चन। ईमानदार होता है संगणक। कभी कभी मैं अध्यापक हूं, मुझे याद है कि कभी कभी एक हद चालाक छात्र होता है, कभी ऐसा महीन प्रश्न करता है कि उसका जवाब मैं दे नहीं सकता, लेकिन मेरे अध्यापक में एक अहम बेटा रहता है। मैं ये कभी नहीं छात्रों के सामने कहना पसंद करता कि ये मुझे नहीं आता है, तो मैं कहता हूं कि मैं कल बताऊंगा या बाद में बताऊंगा। संगणक नहीं, वो तुरंत जवाब दे देता है, ईमानदार होता है। मनुष्य से ईमानदार संगणक है, ऐसी मेरी धारणा है। तो वह दूसरा काम है प्रसंस्करण का, प्रक्रियाओं से उत्तरों को, सेवाओं को ढूंढ निकालना। और फिर तीसरी बात है कि आपने जो बातें उससे मांगी है उसको देना, कि जैसे होटल में जाते हैं और हम ऑर्डर देते हैं वेटर को और उसको कहते हैं कि गरम गरम भजिया लाओ, ये हमारा निवेश है कि हम उसको सूचना देते हैं, और थोड़े समय के बाद जाकर किचन में जाकर वो तश्तरी में गरम गरम भजिया लाता है। ये उसका जो सर्विस रूल है ना, तो वह कंप्यूटर का दूसरा हिस्सा है कि आउटपुट देता है कि आप जो मांगते हैं उसको वो मुहैया कराता है। तो इस तरह से मोटे तौर पर संगणक के कार्य को हम तीन रूपों में बांट देते हैं, एक ग्रहण करना, प्रक्रिया करना और फिर वितरित करना। इन तीन कामों को करने के छोटे मोटे संयंत्र संगणक प्रणाली में विकसित हो गए हैं। वे सारे संयंत्र छोटे मोटे संयुक्त रूप से उसका एक हमने नाम बनाया हार्डवेयर। तो हार्डवेयर और कुछ न होकर कंप्यूटर का एक शरीरी ढांचा मात्र होता है। यदि इसे आप समझ लेंगे तो आपको ऐसा मालूम होगा कि हार्डवेयर के अंतर्गत संगणक के वे उपकरण आते हैं जो घन होते हैं, माने आकार युक्त होते हैं, दृश्य होते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, और वो भौतिक भी होते हैं, एक तरह से जिसको अंग्रेजी में हम सॉलिड कहा करते हैं। तो सॉलिड होते हैं। इसके विपरीत आपको ऐसा दिखाई देगा कि सॉफ्टवेयर है ना, वो दिखाई नहीं देता, वो होता है, जैसे हवा होती है लेकिन दिखाई नहीं देती। वैसे ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में होने वाला अंतर यदि आप समझ लेंगे तो हार्डवेयर समझना बिल्कुल आसान हो जाता है। इनमें से कुछ उपकरण ऐसे होते हैं जो निवेश का काम करते हैं, माने ग्रहण का काम करते हैं। इसको इनपुट अंग्रेजी में शब्द है कि हम अपने सूचना, निर्देश, आदेश हम टंकित करके, क्लिक करके संगणक को समझाते हैं और उसको वह ग्रहण करता है। तो ये निवेश का काम है। ये निवेश शब्द असल में अर्थशास्त्र में भी है, इन्वेस्ट करना, लेकिन इन्वेस्ट अलग संकल्पना है। और यहां संगणक के संदर्भ में निवेश शब्द का अर्थ कि उसमें प्रयुक्त करना, उसमें अंतर्भूत करना, जो आप बातें चाहते हैं उसको सूचित करना निवेश है। फिर जो निवेश हम करते हैं, जो निर्देश उसको देते हैं, उस निर्देश के अनुसार संगणक का जो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय प्रसंस्करण जो इकाई होती है संगणक की, वह क्या करती है, तो आप जो निर्देश देते हैं उसको तरह तरह से खंगाल लेती है, उत्खनन करती है, आर्काइव्स में जाती है, जितनी फाइलें होती है उस सारी फाइलों को ढूंढ निकालती है, और जो आप मांगते हैं उसके ढेर सारे पर्याय ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ढूंढ निकालती है, और फिर संगणक के पटल पर ढेर सारी लिंक आते हैं। लिंक माने वो पर्याय होते हैं कि जैसे हार्डवेयर क्या है, एक प्रश्न आप टंकित करेंगे तो हार्डवेयर क्या है, इसकी ढेर सारी पर्यायों की, उत्तरों की सूची आपको संगणक देता है। ये सब कमाल है केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई का। फिर ये जो उत्तर होते हैं वे उत्तर हमें पटल पर दर्शाते हैं, वो उसका आउटपुट होता है। इसलिए जैसे कि मैंने प्रारंभ में कहा आपको कि इन तीन कार्यों को लेकर संगणक के जितने भी सारे हार्डवेयर है इसको हमने तीन विभागों में बांटा है। तो आइए पहले हम देख लेते हैं कि इनपुट यूनिट्स कौन कौन से, यानी निवेश की इकाइयां कौन कौन सी हैं। कि संगणक अब जानते हैं कि सो मोटो कुछ नहीं करता, माने खुद वह न शुरू होता है न बंद होता है, उसको शुरू करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है, उसको समझाना होता है, तब जाकर वह हमें कोई चीजें दे देता है। वह अपने आप कुछ नहीं करता, उसमें व्यवस्था करने की होती है लेकिन कराने के लिए उसको प्रेरित और परिवर्तित करना होता है। ये संगणक जो होता है, हम उसे जो आदेश निर्देश देते हैं उनका अनुपालन करने की बहुत सारी इकाइयां इस हार्डवेयर के अंतर्गत होती है। मैं सिर्फ नाम गिनूंगा। वैसे तो इसके पूर्व व्याख्यान में जब हमने संगणक का इतिहास देखा था और संगणक की पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी प्रगति को हमने कल इसके पूर्व व्याख्यान में जान लिया था, तो उसमें मैंने संक्षेप में असल में हार्डवेयर की कल्पना आपको दी है। कल हमने संगणक के अंग के रूप में, अवयव के रूप में जिन बातों को कल हमने देखा वे तो हार्डवेयर के अंग है ही, लेकिन उसके साथ और भी छोटी मोटी बातें संगणक के क्रियाकलापों में जुड़ी रहती है। ऐसा माना जाता है कि आज की तारीख में लगभग दर्जन भर हार्डवेयर संगणक के लिए काम करते हैं। एक है कल जैसे हमने देखा था कुंजी पटल, कीबोर्ड होता है कि जिससे हम टंकन का काम करते हैं, गणन का काम करते हैं। दूसरा है माउस, ये माउस की कार्य विधि अपने आप में एक समझ लेने की बात है। कल सिर्फ हमने एक साधन के रूप में उसको देखा था, आज मैं आपको समझाऊंगा कि वह कार्य कैसे करता है। फिर तीसरी बात है कि कल हमने मुद्रक एक शब्द बताया था आपको, मैं आपको बताऊंगी कि आज का जो मुद्रक है ना, वो मात्र मुद्रक नहीं है, वह दोहरा काम करता है। वह छायाचित्र लेता है और फिर उस छायाचित्र की कॉपी भी देता है। एक बहुत पहले जमाने में जब मैं छोटा था, मुझे याद है कि फोटोग्राफर आता था हमारे घर और फोटो खींचकर ले जाता था, और हफ्ते भर के बाद बार बार जाने पर वो उसकी कॉपी हमें दे देता था। आज की तारीख में न कोई कैमरा ऐसा रहा है, न कोई संगणक ऐसा रहा है कि पलक झपकते जो आप मांगते वो दे देता है। कि जैसे इमली दिखाई देने पर हमारे मुख में लार टपकती है, वैसे आज क्लिक करो कि ये संगणक या कंप्यूटर या कैमरा अपना जबड़ा खोल देता है और अपनी जिह्वा निकालकर आपको जो चाहे जो मांगे वो परोसता रहता है। तो ये जो सारी कापियों को प्रदान करने की जो वितरित पद्धति है ना, वह दो तरह से होती है, एक पहले उसका छायांकन और फिर उसका मुद्रण। तो एक है प्रति छायक, जिसको हम स्कैनर कहा करते हैं अंग्रेजी में, और दूसरा है मुद्रक। वो उसका बाद में मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा कि ये कैसे काम करते हैं, उसमें कैसी प्रक्रियाएं होती है काम करने की। वह आज की तारीख में संगणक एक ऐसे क्रांति के पायदान पर आकर खड़ा है दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि अब मनुष्य की उंगलियां भी शायद झड़ जाने की संभावना है। आपको मालूम है कि हमारे पूर्वज थे, आज भी है, वो पेड़ पर बैठे रहते हैं, पूंछ वाले बंदर। बंदर और मनुष्य में आप एक अंतर देखते हैं। देखो अंतर क्या रहा है कि उस बंदर की पूंछ हमारे साथ नहीं है। यदि आप प्रश्न करेंगे कि वह बंदर की पूंछ कहां चली गई, तो हमारे एक विकास का सिद्धांत है कि जिन चीजों का हम इस्तेमाल नहीं करते वह चीजें अपने आप झड़ जाती है। बंदर में और मनुष्य में क्या क्या अंतर आ गया अब देखा करो, तो आपको दिखाई देगा कि उसकी पूंछ निकल गई, क्योंकि पूंछ का प्रयोग मनुष्य ने तब बंद कर दिया जब वह जंगल से बाहर आ गया और गुफाओं में रहने लगा। पूंछ की उसको आवश्यकता ही नहीं रही, तो जो आवश्यक चीजें नहीं रहती वो अपने आप झड़ जाती है। फिर हमारे बाल देखो, हमारे शरीर पर, बंदर के शरीर पर बहुत सारे बाल होते हैं, ऐसा लगता है कि उसने रोएदार सूटर पहना है। हमारे बाल ऐसे थे, वो झड़ कैसे गए? तो हम कपड़े पहनने लगे, वलकल पहनने लगे, घर्षण से वो हमारे बाल पीछे छूट गए। ये जैसी बात है, वैसे मैं दोस्तों इस विकास के सिद्धांत में आपको बताना चाहूंगा कि धीरे धीरे संगणक हमें इतना निष्क्रिय एक तरह से करता जा रहा है। मैं एक छोटा उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि पहले कभी हम पेन से दस्तखत करते थे, हस्ताक्षर करते थे, सही करते थे। आपने देखा होगा कि 10 वर्ष के पूर्व आप जितने हस्ताक्षर करते थे, आज की तारीख में उसकी तुलना में लगभग 10% हस्ताक्षर भी आप नहीं करते। क्या कारण है इसका? कारण यह है कि अब हमने संगणक प्रणाली से ऐसे ऐसे यंत्र खोज निकाले हैं कि बिना लिखे पढ़े हमें बहुत सारी चीजें मिलती है। अभी कुछ ही दिनों के पहले मैं सिंगापुर गया था, वहां एक मेरा भांजा रहता है। मैंने देखा कि उसके घर में जितने सारे डिजिटल गैजेट हैं, वे कैसे खुलते हैं मालूम है? बस वो अपनी आवाज उनको समझाता है और खुल जा सिम सिम की तरह, ओपन कहने से ओपन, क्लोज कहने से क्लोज, यानी दरवाजा ओपन करना है तो हैंडल वगैरह नहीं घुमाना, बस कहना है ओपन, तो अपने आप दरवाजा खुल जाता है, क्लोज क्लोज होता है। यहां तक कि बिजली भी आवाज से बंद होती है और शुरू होती है। कभी मेरे बचपन में रघुवीर जादूगर था, वो तालियां बजाते ही बिजली गुम करता था। अब मुझे पता चला कि उसकी तालियों में क्या जादू थी। ये जादू नाम की जो चीज है अब दुनिया से हट गई, और ये जादू को हकीकत बनाने का जो सारा करिश्मा है दोस्तों, ये संगणकीय प्रणाली ने विकसित किया है। उसको हम कहते हैं कि संगणक में एक ऐसी शक्ति आ गई कि तुम्हारी ध्वनि को वो पहचानती है। जैसे हमारे अंगूठे की रेशे अलग अलग होती है, आपका थंब होता है ना, बैंकों में जाओ थंब लगाने से, या किसी कार्यालय में जाओ थंब लगाने से आप अपनी हाजिरी वगैरह भर देते, अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। तो थंब में जो ताकत होती है वैसे आवाज में भी ताकत होती है। आपको ये मालूम है हमारे हरेक की आवाज का चित्र, हमारे हरेक की आवाज की लहरें अलग अलग होती है। मेरी आवाज अलग, लता मंगेशकर की अलग, किशोर कुमार की अलग और सोनू निगम की अलग। ये अलगपन जो है ना, वह हमारे जो सप्त स्वरों की जो क्षमता है वो कमोबेश होती है। किसी में पंचम ज्यादा होता है, किसी में खर्ज ज्यादा होता है, अलग अलग आवाज हमारी निकलती है। आज की तारीख में हमारे सारे संगणक के क्रियाकलाप टंकन से शिफ्ट होते जा रहे हैं, स्थानांतरित होते जा रहे हैं, और बस मौखिक आदेश से संगणक का सारा कारोबार अब चलने की संभावना आने वाले दिनों में है। आज तो उसका प्रारंभ है। वो प्रारंभ का एक मशीन है जिसको हम वॉइस रिकॉर्डर कहा करते हैं। कभी आपने किसी घर में देखा होगा कि फोन के साथ वह लगाया जाता है वॉइस रिकॉर्डर, कि आप झुटमुट कोई आवाज निकालकर किसी को फंसा सकते थे कभी। अब यह वॉइस रिकॉर्डर आप कितनी भी छद्म आवाज निकालने का प्रयास करो वो डीरेकग्नाइज करता है। तो ये कंप्यूटर में एक नया हार्डवेयर विकसित हो गया है। फिर आप तो आज जानते हैं कि एंड्रॉइड मोबाइल में टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी आ गई, तो वह स्पर्श पटल का जो तंत्र है, वह स्पर्श पटल का तंत्र भी एक नए तरह का हार्डवेयर है जो आजकल बड़े पैमाने पर स्मार्टफोन में उपयोगित है, और शिक्षा व्यवस्था में भी वह स्मार्ट बोर्ड के रूप में विकसित होता जा रहा है। फिर हार्डवेयर के अंतर्गत आता है दोस्तों गुरुत्वीय स्याही पहचानक, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मैग्नेटिक इंक रीडर। ये मैग्नेटिक इंक रीडर क्या है? पहले हमारे जो बैंक के चेक थे ना, वे चेक उसको हम नकली बना सकते थे। अब चेक और नोट नकली बनाना बहुत कीमती बनता जा रहा है। ऐसा आजकल की तारीख में बताया जाता है दोस्तों कि पहले खोटे सिक्के बहुत चलते थे, जाली नोट बहुत छपते थे। अब नोटों के निर्माण और उसके विकास में हमने इतनी तरक्की की है, वो सारी तरक्की एक बात पर निर्भर है दोस्तों, और वह है मैग्नेटिक इंक। गुरुत्वीय स्याही एक ऐसे ऑक्साइड से बनाई जाती है कि जो हुबहू दूसरी बनाना, जैसे किसी कुछ ताले होते हैं कि उस ताले की विशेषता होती है कि उसकी दूसरी चाबी नहीं बनती, ऐसा अपर्यायी ताला जैसे होता है। अब हमने संगणक पर ऐसे कागजातों को रिकग्नाइज करने, समझने, ढूंढ निकालने, पहचानने, स्वीकार करने, अस्वीकार करने जैसे जो सारे कार्य संगणक के जरिए शुरू किए हैं, वह उसका भी एक हार्डवेयर हमने विकसित किया है, और वह है दोस्तों गुरुत्वीय स्याही पहचानक। फिर दूसरा होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजर। ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजर क्या है कि अब संगणक, पहले लोग ऐसा कहा करते थे कि संगणक को दिखाई नहीं देता, संगणक को सुनाई नहीं देता, संगणक सिर्फ प्रक्रिया करता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये हमारे पास जो ORC टेक्नोलॉजी आ गई ना, प्रकाशीय संप्रतिक अभिज्ञानक के रूप में जिसको हम प्रयोगित करते जा रहे, वो और कुछ नहीं होता है कि हमारे प्रत्येक शब्द, जैसे मैंने अभी बताया ना आपको कि मेरा बोलना अलग होता है और किसी दूसरे का बोलना अलग होता है, वैसे हमारे हर स्वर और हमारे हर वर्ण की एक पिच होती है। पिच माने कि अ, ऐसी कल्पना करो कि अ एक डॉट है, आ दो डॉट है, आई तीन डॉट है, अ चार डॉट है, ऐसी कल्पना करो। ये डॉटिंग सिस्टम है ना, वह हमारे एक अक्षर को दूसरे अक्षरों से अलग कर देती है कि पहले हम आकार उकार मात्राएं आदि से अक्षरों को बदल देते थे, अब स्थिति बदल गई है। अब स्थिति ऐसी है कि आप उच्चारण करो किसी शब्द का और किसी व्यंजन का, किसी वाक्य का, हमारा कंप्यूटर उसको सुनता है और उसको सुनकर लिखता भी है। अब कंप्यूटर सुनने लगा, कंप्यूटर देखने लगा, कंप्यूटर लिखने लगा, कंप्यूटर सोचने लगा। ये सारी जो तरक्की है कंप्यूटर की धीरे धीरे हो रही, ये और कुछ न होकर हमारे तरह तरह के हार्डवेयरों का विकास मात्र है। फिर दोस्तों, मैं और एक नए तंत्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इसके पहले मैंने बताया कि कंप्यूटर आवाज को पहचानता है, फिर मैंने बताया कि वह स्याही को पहचानता है, अब मैं आपको बताऊंगा कि वह प्रकाश को भी पहचानता है। यानी प्रकाश किरणें जो होती है, ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी हमारे पास आ गई, आजकल का हमारा सारा टेलीफोन का जो व्यवहार है वह पहले वायर से होता था, अब केबल से होने लगा। केबल में होता क्या है, बस लेसर की किरणें जैसी होती है वैसे महीन से महीन तारे होती है और वह तारे प्रकाश की शक्ति को वहन करने की क्षमता रखती है। वो जो ऑप्टिकल फाइबर है, उस ऑप्टिकल फाइबर के जरिए अब धीरे धीरे हमने संदेश के साथ और भी बहुत सारी इकाइयां उसको जोड़ दी है और जोड़ते जोड़ते अब स्थिति ये आ गई है कि हम उससे रंग छोड़ सकते हैं, ध्वनि छोड़ सकते हैं, कोई टेक्स्ट माने पाठ छोड़ सकते हैं, तरह तरह का विकास उसमें हो गया है। और ये प्रकाशीय संकेतक अभिज्ञानक से हम लिखित पाठ्य सामग्री को पढ़ सकते हैं और दोबारा उसका उत्पादन भी कर सकते हैं। अभी एक जमाना था, मैं आपको बताऊं ये कैसे काम करता है। तो पहले मैं लिखता था और डाक में जाकर वो लेख या आलेख या कोई चिट्ठी छोड़ देता था। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं, मैं लिखता हूं घर में, घर बैठे उसको स्कैन करता हूं, स्कैन के जरिए कंप्यूटर में ईमेल में कॉपी करके उसको भेज देता हूं। ये सारी प्रेषण व्यवस्था आ गई, ये ORC सिस्टम से और OMR सिस्टम से एक दूसरे को जोड़कर ये सारे तंत्र अब धीरे धीरे आदमी को घर बैठे सारे क्रियाकलाप करने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। फिर है एक नया हार्डवेयर हमारे संगणक का, लाइट पेन अंग्रेजी में उसको कहते, प्रकाशित लेखनी। प्रकाशित लेखनी माने लेखनी में लाइट होता है और उस लाइट के जरिए हम उसकी रेज होती है, रेज से हम लिख सकते हैं। फिर दूसरा है, ये पुराना पड़ गया लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल होता है इसलिए इसका मैं निर्देश कर रहा हूं, संकेतक यंत्र होता है। पहले जो पंचकार्ड सिस्टम का संगणक होता था उसमें पंचकार्ड होते थे, यानी तख्तियां होती थी, उसमें छोटे बड़े और तरतीब बेतरतीब छेद लगाए जाते थे और उन छेदों के आधार पर हम गणितीय प्रक्रियाएं किया करते थे। दोबारा इस तंत्र के जरिए हम कुछ हार्डवेयरों को विकसित करने जा रहे हैं। पहले पंचकार्ड मशीन जैसी चलती थी वैसे और तरह की चीजों का इस्तेमाल करके इस तंत्र को हम दोबारा प्रयोगित करने जा रहे हैं। फिर एक शब्द बार बार हम घर बैठे भी जगह जगह पर इस जहां भी कंप्यूटर का इंटरनेट कनेक्शन होता है वहां एक शब्द का प्रयोग आप अक्सर सुनते हैं। पहले दो शब्द सुनते थे, अब एक ही शब्द सुनाई देता है। पहले हम शब्द सुनते थे रूटर और मोडेम, अब रूटर और मोडेम एक ही जगह आ गए। जैसे पहले स्कैनर अलग था और प्रिंटर अलग था, अब प्रिंटर और स्कैनर जैसे एक बन गया, वैसे इंटरनेट से जुड़ने वाली जो सारी प्रणाली है हमारी, जो सारी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को धीरे धीरे एक करके हमने एक ऐसा द्विधारी परिवर्तक विकसित किया है जिसको स्थूल रूप से अंग्रेजी में मोडेम कहा करते हैं। ये मोडेम और कुछ नहीं करता है, ये मोडेम टेलीफोन पर होने वाले संदेश को जो कि ऑप्टिकल फाइबर से हमारे पास आता है उसको वह अक्षरों में या लिखित पाठ्य सामग्री में उसमें परिवर्तित करता है। तो ये जो परिवर्तन करने का जो कार्य है वह करने वाला जो हार्डवेयर होता है वो मोडेम नाम से पहचाना जाता है। उसमें छोटे छोटे दिए होते हैं, चार पांच केबल उसको जोड़े रहते हैं और फिर अलग अलग दिए जलते हैं कि जैसे आपका टेलीफोन शुरू है तो एक दिया जलेगा, फिर आपका इंटरनेट शुरू है तो दूसरा दिया जलेगा, फिर वाईफाई शुरू है तीसरा दिया जलेगा, इंटरनेट का तुम्हारा गूगल माइक्रोसॉफ्ट इंजन शुरू है या नहीं तो चौथा दिया जलेगा। इस तरह से देखने मात्र से हमें पता चलता है कि कौन से नल में पानी आ रहा है कौन से नल में पानी नहीं आ रहा है, देखते ही हमें इजहार होता है। ऐसे बहुत ही विकसित मॉडेम जैसे हार्डवेयर हमने विकसित किए और इन सब को मिलाकर कंप्यूटर का काम दोस्तों होता है। तो कुंजी पटेल के बारे में तो मैंने इसके पहले आपको कल विस्तार से समझा, इसलिए दोहराव को टालते सीधे मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कैसे माउस की कार्य विधियां होती है, यानी वो कैसी सिस्टम है, कैसी प्रणाली है कि जिससे हमारा माउस काम करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो माउस होता है वह निवेश इकाई का एक अभिन्न अंग है, इसे संकेतक भी कहा जाता है, यानी पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में भी इसका संगणक प्रणाली में उपयोग होता है कि हम माउस के जरिए एक तीर को ले जाकर एक विशिष्ट आइकॉन पर, एक विशिष्ट चिन्ह पर, एक विशिष्ट चित्र पर उसको क्लिक करते हैं, माने उसको चयनित करते हैं और चयनित करने के बाद वो जो आइकॉन है उस आइकॉन में होने वाला सॉफ्टवेयर खुल जाता है और हमें जो भी चीजें आवश्यक है उसको हम ढूंढ निकालते हैं। हमें इंटरनेट चाहिए तो इंटरनेट में भी दो तीन तरह के अब प्रकार आ गए, एक धीरे चलने वाला है, एक फास्ट चलने वाला है। जैसे गूगल क्रोम में जाओगे तो आपको वो सारी सामग्री पल भर में मिलती है, यदि आप सीधे सादे से इंटरनेट में जाओगे तो खुल जा सिम में देर लगती है। ये जो सारी कार्य प्रणाली है ना, ये सब चयनित करने का माध्यम है हमारा माउस, और वह माउस एक ऐसा उपकरण है कि जिसके जरिए हम सॉफ्टवेयर को चुन सकते हैं, हार्डवेयर को चुन सकते हैं, प्रोग्रामों को चुन सकते हैं, संगणक की क्रिया को शुरू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ये सब माउस की कार्यविधि से चयन की प्रक्रिया आरंभ होती है और इसलिए ऐसा बताया जाता है कि माउस ये जैसे हर मर्ज की एक दवा नाम के शब्द का प्रयोग हम हिंदी में करते हैं, वैसे माउस भी बहुत सारे काम एक साथ करता है। माउस को मैं तो ये कहूंगा कि माउस में तीन बातें होती है, एक उसका दाहिना हाथ होता है जिसको हम राइट क्लिक कहा करते हैं, बाया हाथ होता है जिसको लेफ्ट क्लिक कहा करते हैं, और एक शंकर की तरह इसकी तीसरी आंख होती है, बीच वाली स्क्रोलर होता है। एक ऐसा बटन होता है जो ऊपर नीचे करता है। ये तो मोटे तौर पर संगणक की बात है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सिस्टम है माउस के प्रयोग की, इस प्रयोग से क्या क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। इसमें भी तरह तरह की विधियां हैं, कैसे कि एक बार दबा दो, एक बार क्लिक करो तो एक काम होता है, दो बार करो तो दूसरा काम होता है। ये उसके क्लिक पर कार्य विधियां निर्भर होती है। तो यदि ऐसी कल्पना करो कि विंडोज मेन्यू को आपको खोलना है तो आपको दो बार क्लिक करना पड़ेगा, एक बार क्लिक करने से वो खुलता नहीं है। ये अपनी अपनी हर एक हार्डवेयर की अपनी युक्तियां होती है, तरकीबें होती है और उसकी कार्य पद्धति भी होती है। फिर दूसरा है वो जो मैंने कहा ना कि पटल पर एक तीर हम देखते हैं जिसको कर्सर कहा करते हैं अंग्रेजी में। ये जो कर्सर होता है, संकेतक होता है ना, उस संकेतक को घुमा फिराने से हम अपने प्रतिदर्शों को चुनते हैं, आइकॉन को चुनते हैं और चुनकर अपेक्षित कार्य करा सकते हैं कि जैसे हमें प्रिंटिंग में जाना है तो प्रिंटिंग को खोल दो, स्कैनर में जाना है स्कैनर को खोल दो, फाइल में जाना है फाइल को क्लिक करो। ये सब खोलने बंद करने का जो सारा काम है ना, वह ये माउस की जो कार्य पद्धति है वह करती रहती है। और दूसरी एक बहुत बड़ी बात है कि ये हमारा जो माउस होता है वह अपेक्षित कार्य सूचनाओं के चयन की भी हमें सुविधा देता है कि जैसे आप स्टार्ट बटन दबाएंगे तो आपको ढेर सारे प्रोग्राम खुलते हुए दिखाई देंगे। एक्सेसरीज में जाना है तो एक्सेसरीज में जाओ, माने किराना या परचून की दुकान में जाना है परचून की दुकान में जाओ, कपड़े की दुकान में जाना है कपड़े की दुकान में जाओ, आइसक्रीम खाना है तो आइसक्रीम पार्लर में जाओ। ढेर सारे मेनू, ढेर सारे कार्यक्रम, ढेर सारी गतिविधियां, प्रणालियां कंप्यूटर में भरी रहती है। वह हम प्रतिदर्श से आइकॉन को क्लिक करके इसको हम चयनित करते हैं। माउस दबाने पर पटल पर वह चिन्हांकित एक रेड घड़ी आती है। आपने देखा होगा कि कंप्यूटर शुरू करने पर क्लिक करते ही एक डमरू जैसा चिन्ह आ जाता है, वो डमरू रेड घड़ी जैसा होता है ना, वो समझाता क्या है मालूम है, बेटे थोड़ा सब्र करो मैं हाजिरी हो रहा हूं। ये हौले से समझाने वाली जो बात है ना, वो रेत की घड़ी हमें समझाती है कि जैसे कभी आपने रास्ते पर एक फलक देखा होगा, रास्ते पर कोई काम चलता रहता है कि गड्ढे भरने होते हैं, नया रास्ता बनना है, तो उसमें एक बोर्ड लिखा रहता है, देखो वर्क अंडर प्रोग्रेस। फलक होता है बरसों के बरस, प्रोग्रेस कभी दिखाई नहीं देती। कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी हो जाता है कि रेत घड़ी कभी कभी जल्द कोई कार्यक्रम खोल देती है, कभी देर से खोल देती है। तो वह रेत घड़ी हमें समझाती है कि वर्क इज अंडर प्रोग्रेस। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये माउस सिस्टम जो है ना, वह और कुछ न होकर हमारे तरह तरह के क्रियाकलापों का समन्वय और प्रारंभ करने वाला साधन है। फिर जैसे मैंने बताया कि संगणक पर जो सारा काम होता है उसमें जब हमें कापियां आवश्यक होती है तो वह स्कैनर और प्रिंटर से हमें मिलती है, वह भी कल हमने विस्तार से देखा है। जो नई बात है उसको मैं आपको समझाना चाहूंगा, वह है जैसे इसके पहले मैंने बताया था कि वॉइस रिकग्नाइजर। संगणक की क्षमता जो है वो धीरे धीरे ऐसी विकसित होते जा रही है, लोग बता रहे हैं कि अब संगणक मनुष्य जैसा संवेदनशील होता जा रहा है। ये संगणक का संवेदनशील होना, अचूक काम करना, उसका पारदर्शी होना, उसका अधुनातन होना, ये सब तरह तरह के तंत्र के इजहार से दोस्तों संभव हो गया है। फिर ऐसा ही एक तंत्र है स्पर्श तंत्र, जिसको हम टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी कहा करते हैं। इसमें भी अब हम आइकॉन को स्पर्श करते ही, पहले जो माउस से काम होता था, संकेतक से काम होता था, अब स्पर्श मात्र से वो सारा काम होने लगा है। ये काम करता कैसे मैं आपको बिल्कुल संक्षेप में समझाना चाहूंगा कि एक महान पर्दे के बीच हम एक द्रव छोड़ देते हैं, कुछ स्क्रीन में कुछ ऐसे वायु भी छोड़ देते हैं और उसकी तह में जाकर हम छोटे मोटे ऐसे संकेतक ट्रांजिस्टर लगाए होते हैं कि जैसे आप देखा करते हैं कि एंड्रॉइड टेलीफोन में हम टाइप करते हैं, ए दबाने से ए आता है, तो हमारी उंगलियां इतनी बड़ी है और उसके खाने इतने छोटे होते जा रहे कि अब एक दिक्कत आने लगे कि ए दबाने से ए के साथ बी भी दब जाता है। तो लोग ऐसा बता रहे कि अब एक तो उंगलियों को छिल डालो, नहीं तो कंप्यूटर को बड़ा करो। ये तंत्र जैसे विकसित होता जा रहा है, नई नई समस्याएं भी हमारे हार्डवेयर से विकसित होने लगी है, इसलिए ऐसा लोग मानते हैं कि उंगलियों का छिनना तो संभव नहीं, तो बस ये सारी चीजें अब आवाज से करने लगो या और कोई नया तंत्र विकसित करो कि जिससे हमारी जो गलतियां होती है कंप्यूटर के प्रयोग में, हार्डवेयर में, उससे हम बच पाएंगे। आज ऐसी स्थिति है कि ये टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी से सारे चित्र, सारे पाठ माने टेक्स्ट, और इनको पढ़ने की क्षमता भी धीरे धीरे कंप्यूटर में आ गई है और हम पहले की तुलना में ज्यादा गति से और बिना किसी गलती के काम करने की स्थिति में आ गए हैं। ये जो नए तंत्र मैंने बताए प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में या हमारे संपर्क माध्यमों में, जो ऑप्टिकल और मैग्नेटिक जो शक्तियां आ गई, इन शक्तियों से अब नई नई बातें संभव हो गई है। मैं उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ की परीक्षा में बैठते हैं। मैं एक और परीक्षा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। यदि आप इस टेक्नोलॉजी को जानना चाहते हैं तो उसका वह सुंदर उपाय है, MSCIT जैसा कोर्स है, वह स्वयं शासित कोर्स है कि आप खुद संगणक पर जाते हैं, खुद उस प्रोग्राम को खोलते हैं, खुद ट्यूटोरियल डाउनलोड करते हैं, खुद लिखते हैं, खुद जांचते हैं, जांचते खुद नहीं लेकिन खुद जांचने की भी अब स्थिति धीरे धीरे आती जाएगी। तो अब संगणक में ये ORC टेक्नोलॉजी, OMR टेक्नोलॉजी से अब ऐसी बातें संभव हो गई कि विशेषकर ऐसी कल्पना करो कि यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ आपको 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एक पर्चा भेजेगा और उस पर्चे में चॉइस बेस आंसर आपको लिखने, उत्तर लिखने, या तो गलत या सही चिन्ह आप लगा दो और अपने उत्तर को पहचानो। ऐसी एक उत्तर पुस्तिका हम आपको भेजेंगे, आप हमें वापस भेजेंगे, हम जांचेंगे। ये सब मैनुअल काम जो हुआ करता था, मनुष्य पुराने जमाने में ये काम करता था, अब अध्यापक की छुट्टी हो गई, अब पर्चा जांचने के लिए अध्यापक होने की आवश्यकता अब नहीं रही है। ये जो नया तंत्र है, ये नया तंत्र उसको ये समझ में आता है कि उत्तर ठीक है या नहीं, और ठीक है तो ठीक उत्तर को वो जोड़ देता है, गलत उत्तरों को जोड़ देता है और 10 में से 3-4 बराबर ठीक कितने हैं, गलत कितने हैं वो समझाते, इसके आधार पर आपका परिणाम निकलता है। अब तो स्थिति ऐसी आ गई कि आप उत्तर पुस्तिका डाल दो और रिजल्ट पाओ। रिजल्ट पाने के लिए महीने के इंतजार की अब आवश्यकता इस नई टेक्नोलॉजी से छूट गई है, ऐसा मैं आपको समझाना चाहूंगा। और एक दूसरी बात मैं, जो नई लेकिन आम बात है, हमें मालूम नहीं होती इसके लिए वो नई लगती है, कभी आप मॉल्स में जाते हो और मॉल्स में अपनी ट्रॉली में ढेर सारी चीजें लाते हो, वो जो काउंटर पर बैठा हुआ आदमी होता है ना, वो पल भर में सारी चीजों का हिसाब करता है। वो हिसाब होता कैसे उसका, तो उसके हाथ में जो लाइट पेन होता है ना, एक ऐसी इंफ्रारेड लाल रंग की बिजली वो अपनी वस्तु पर धरता है और वस्तु पर बारकोड होता है, माने उसमें कीमत लिखी होती है। वो कीमत वह पढ़ता है। ये भी एक नया कंप्यूटर हार्डवेयर है जिसको हम लाइट पेन कहा करते हैं। इस लाइट पेन के जरिए आजकल की तारीख में बैंकों में, ग्रंथालयों में, मॉल्स में, सब जगह बड़े पैमाने पर मिटान, घटाई, गुना, छेद जैसे गणितीय क्रियाकलाप की ढेर सारी ट्रॉली का हिसाब एक पल में होने का जो करिश्मा है वह इस लाइट पेन से अब संभव हो गया है। फिर एक नई बात संगणक के हार्डवेयर में और एक आ गई है, वह है मुद्रण और स्कैनर की। इसमें लेसर टेक्नोलॉजी जो आजकल की तारीख में विकसित हो गई है, कलर डॉफलर सिस्टम जो आ गई है, उसमें तो अब ऐसा बताया गया है कि तुम जितने सुंदर नहीं होते हो आपकी फोटो उतनी सुंदर बन सकती है, या आप अपनी फोटो को मनचाही छवि दे सकते हैं। कि जैसे अब मेरी ही कल्पना करो कि मैं 65 बरस का बूढ़ा हूं और मैं 16 बरस का अपने आप को दोबारा देखना चाहता हूं, तो अब संगणक में यह संभव है कि मैं 16 बरस में कैसा दिखाई देता था वह मैं अपने आप सेल्फी से देख सकता हूं। ये जो सारा मनचाहा तंत्र विकसित हो गया है ना, ये सब कंप्यूटर की हार्डवेयर का कमाल है। और इसके साथ एक छोटा यूनिट लेकिन महत्वपूर्ण यूनिट है जिसको लेकर हम बाद वाले लेक्चर में जाएंगे, उसमें एक है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वह इसी का हिस्सा है, उसको भी देखेंगे और फिर हम निर्गत इकाइयों की ओर जाएंगे। धन्यवाद।